اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی اللہ سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بیعدد کل ذرۃ مئات الف مرتین. سورہ الحجر آیت نمبر 51.
انہیں ابراہیم کے مہمانوں کا بھی حال سنا دو. جب انہوں نے ان کے پاس آ کر سلام کہا تو انہوں نے کہا کہ ہم کو تو تم سے ڈر لگتا ہے. انہوں نے کہا ڈرو نہیں, ہم تجھے ایک صاحب علم فرزند کی بشارت دیتے ہیں.
اب اللہ تعالیٰ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہا ہے وَنَبِّئُهُمْ عَنْ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ, ان کو ابراہیم علیہ السلام کے مہمانوں کا واقعہ سناؤ. اب اس میں واقعے میں کیا ہے؟ واقعے میں یہ ہے کہ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے رہے کہ آپ کے پاس فرشتے کیوں نہیں آتے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کا ایک جگہ جواب دیا تھا کہ اگر فرشتے آئیں گے تو بس وہ تو فیصلہ ہو چکا ہوگا, اور انسانی شکل میں آئیں گے تو وہ تو فیصلہ کریں گے, یا ویسے آئیں گے تو وہ فیصلے کے دن آئیں گے. فرشتے حق ہیں لیکن ہر ایک فرشتوں کی ڈیوٹی ہے. یہاں اب فرشتے آئے ہیں ابراہیم علیہ السلام کو, یہ ایک مثال پیش کی جا رہی ہے کہ پیغمبروں کے پاس فرشتے آ سکتے ہیں. تو اب وہ یہاں انسانی شکل میں آئے اور ابراہیم علیہ السلام کے پاس ادھیر عمر کے شکل میں آئے اور ان سے کہہ رہے ہیں کہ اس دخلوا علیہ فقالوا سلاما قال انکم منکم واجلون. جب ان کے پاس آئے انہوں نے سلام کیا اور انہوں نے کہا ہم کو ابراہیم علیہ السلام کا کہ ہمیں تم سے ڈر لگتا ہے. اب ابراہیم علیہ السلام نے یہ کیوں کہا کہ تمہیں ہمیں تم سے ڈر لگتا ہے؟ وہ اس لیے کہا کہ ابراہیم علیہ السلام انتہائی مہمان نواز تھے, تو انہوں نے فوراً کھانا پکوایا اور دسترخوان لگایا اور فرشتوں کو, لوگ انسانی شکل میں تھے, ان کو دعوت دی لیکن انہوں نے ہاتھ نہیں بڑھایا. تو ابراہیم علیہ السلام پریشان ہو گئے کیونکہ یہ ایک وہاں کا طریقہ ہے کہ اگر کوئی دشمن ہے کہ تو دشمن کے گھر کا کھانا نہیں کھاتا, نمک نہیں کھاتا اس کا. لیکن یہ تو وہ سمجھ گیا فرشتے, انہوں نے تو ابراہیم علیہ السلام نے ان سے کہا کہ مجھے تو تم سے ڈر لگ رہا ہے, یہ یا تو تم میرے دشمن ہو, مجھے نقصان پہنچانا چاہ رہے ہو کچھ کوئی ایسی. تو انہوں نے کہا کہ نہیں, جواب دیا
انہوں نے کہا ڈرو نہیں, ہم تجھے ایک صاحب علم فرزند کی بشارت دیتے ہیں. کہا کیا اس بڑھاپے کے آ جانے کے بعد تم مجھے خوشخبری دیتے ہو؟ یہ خوشخبری تم کیسے دے رہے ہو؟ انہوں نے کہا ہم آپ کو بالکل سچی خوشخبری سناتے ہیں, آپ مایوس لوگوں میں شامل نہ ہوں. کہا آپ نے رب تعالیٰ کی رحمت سے نا امید تو صرف گمراہ اور بہکے ہوئے لوگ ہی ہوتے ہیں.
اب ابراہیم علیہ السلام کو ان فرشتوں نے کہا کہ آپ پریشان مت ہوں, کہ کیوں کہ قالوا لا تعجل انا نبشرک بغلام علیم, ہم نے آپ ہم سے ڈرے نہیں, ہم آپ کو ایک خوشخبری دینے آئے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ایک بیٹا دینے والا ہے. یہ بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام ہے اور وہ صاحب علم ہوں گے بہت زیادہ. قال بشر تو مونی اللہ ان مسا یا نیل کبرو فبیما تو بشرون. تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اس بڑھاپے میں تو مجھے خوشخبری دے دو, یہ کیسی خوشخبری ہے؟ اب یہ ابراہیم علیہ السلام نے کیوں کہا؟ اس لیے کہ ابراہیم علیہ السلام کی عمر اس وقت 100 سال اور ان کی بیوی کی 80 سال اور وہ 65. تو عام طریقہ یہ ہے, اللہ کی سنت یہ ہے کہ اس عمر میں بچے نہیں ہوتے, لیکن اللہ کے لیے تو کچھ مشکل نہیں ہے, وہ کسی وقت بھی معاوضہ دکھا سکتا ہے, کسی وقت بھی کسی انسان کو فضیلت کے درجوں پہ دے سکتا ہے, اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کر سکتا ہے. تو یہاں انہوں نے کہا کہ نہیں, ہم اللہ تعالیٰ یہ کالا بشر نہ کا بالحق فلا تکو تکم منن قانتین, آپ نے کہا ہم بالکل سچ آپ کو خوشخبری دے رہے ہیں, آپ مایوس نہ ہو. تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا قالا ومن یقنط من رحمت بہ الا الضالون, کیا میں اپنے رب کسی کی رحمت سے نا امید ہوں, میں تو اس کی رحمت سے نا امید نہیں ہو رہا. نا امید کون ہوتے ہیں؟ گمراہ, بھٹکے ہوئے لوگ. ہم یہاں ہمیں بتایا جا رہا ہے, اللہ کہہ رہا ہے کہ جو اللہ سے کنیکشن کر لیتا ہے, اللہ پہ یقین کر لیتا ہے, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حسنہ کے مطابق زندگی گزارتا ہے, اپنی زندگی میں اخلاص ہوتا ہے اور قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارتا ہے, تو اللہ تعالیٰ اسے کسی وقت بھی کسی لحاظ سے بھی خوشخبری دے سکتا ہے. یہ ہر انسان کے لیے, یہ صرف ابراہیم علیہ السلام کے لیے نہیں ہے, یہ ہر اس انسان کے لیے ہے جو اپنے کو بدل لے اور اللہ کو مقصد زندگی بنا کر قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارے, اپنا مقصد اللہ کو پانا کر لے, اللہ کا دیدار کر لے. تو یہ تمام نعمتیں جو اللہ تعالیٰ اس عمر میں ابراہیم علیہ السلام کو دے رہا ہے, تو ہر انسان کو دے سکتا ہے جو اپنے اس میں اخلاص رکھ رہا ہو. تو اور پھر یہاں میں دوسری چیز یہ بتائی جا رہی ہے کہ نا امیدی کفر ہے, اور نا جو مومن ہوتا ہے وہ کبھی بھی نا امید نہیں ہوتا, کسی حالت میں وہ نا امید نہیں ہوتا. اور نا امید کون ہوتے ہیں, یہ دوسری چیز ہمیں بتائی جا رہی ہے, نا امید کون ہوتے ہیں؟ جو گمراہ ہوتے ہیں اور بھٹکے ہوئے ہوتے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں. آپ جہاں اب اس میں اب ہمیں دیکھنا ہے, اپنا جائزہ لینا ہے کہ اگر ہم میں یہ چیز ہے کہ ہم نا امید ہو جاتے ہیں, مایوس ہو جاتے ہیں, پریشان ہو جاتے ہیں, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم بیمار ہیں روحانی طور پہ, اور ہمارا کنیکشن صحیح اللہ تعالیٰ سے جڑا نہیں ہے, ہمیں اللہ پہ صحیح یقین آیا نہیں ہے, ہم صرف زبانی اللہ اللہ کر رہے ہیں, ہمیں ویسا زبانی ہم اس کو اپنا رب مانتے ہیں, یقین کے ساتھ نہیں ہے. کیونکہ تمام اصل چیز جو ہے وہ یقین ہے, اللہ کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے, تمام کائنات اس کے ہاتھ میں, ہر چیز اس کے ہاتھ میں ہے, بس ہمیں اللہ سے جڑنا ہے, اللہ کو دیدار کی نیت کرنی ہے, اخلاص اختیار کرنا ہے, اور اپنی زندگی کے مقصد کو جاننا ہے, اور قرآن اور سنت کے مطابق زندگی گزارنی ہے. تو کسی قدم پہ بھی چاہے کتنی سی زیادہ مشکلات ہوں, پریشانیاں ہوں, نقصانات ہو, کبھی بھی جو مومن ہوتا ہے وہ نا امید نہیں ہوتا, ہمیشہ وہ اللہ کی ذات پہ یقین رکھتا ہے. تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے
پوچھا کہ اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتوں تمہارا ایسا کیا اہم کام ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ ہم مجرم قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں, مگر خاندان لوط کہ ہم ان سب کو تو ضرور بچا لیں گے.
اچھا, اب اللہ تعالی فرماتا ہے قالا ما فما قالا فما خطبكم ايها المرسلون, انہوں نے پوچھا اور ابراہیم علیہ السلام نے فرشتوں سے پوچھا کہ تم کس مشن پہ آئے ہو, کس کام کے لیے آئے ہوئے ہو؟ تو انہوں نے کہا قالوا انا ارسلنا الى قوم مجرمين, اللہ تعالی نے ہمیں مجرموں کی طرف, مجرم قوم کی طرف بھیجا. مجرم قوم کون تھی؟ لوط علیہ السلام. انتہائی مجرم تھے, کیونکہ وہ ان میں وہ بیماریاں آ گئی تھی جو اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے مرد کے لیے عورت کو پیدا کیا ہے, اس سے عورت سے نسل چلتی ہے. اب جب مرد مرد زنا کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی تو ناراضگی کو, اللہ تعالیٰ کو کسی صورت میں بے حیائی پسند نہیں ہے, نہ مرد کی نہ عورت کی. جب ہم اللہ تعالیٰ نے جو طریقہ بنایا ہے عورتوں کے ذریعے سے مرد نسل کے لیے, تو اب مردوں سے اپنی شہوت کو پورا کرنا ये इंतहाई सा गुनाह है, इसलिए हमें अपने बच्चों को बचाना चाहिए। तो लूत अलैहिस्सलाम इनको तबलीग करते रहे लेकिन इन्होंने माना नहीं, तो अल्लाह ताला ने इनको, अब गिरफ्त का टाइम आ गया, तो अल्लाह ताला ने उनके पास भेजा, फरिश्तों को भेजा। अब ये फरिश्ते जो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास अधेड़ उम्र के आदमियों की शक्ल में आए थे, यहाँ वो नौजवानों की शक्ल में आए। और जाहिर है फरिश्ते हैं, कहीं मुसाफिर तो है नहीं कि उनपे धूल मिट्टी हो, नहीं, इंतहाई पाक साफ सफेद कपड़ों में लड़कों की शक्ल में। अब ये लड़कों की शक्ल में क्यों है, क्योंकि उनकी ये बीमारी थी। तो अब जैसे उनके पास आ गए, अब अल्लाह ताला ने पकड़ लिया इस कौम को, अब अल्लाह ताला सजा देना चाह रहा है। तो अब अल्लाह ताला ने कहा कि इल्ला आला लूता इन्नका लमुन्ना जूहुम अजमईन, खानदान जो लूत है के उन सबको अल्लाह ताला उसमें से जो अल्लाह की राह में है, जो लूत अलैहि सलाम की पैरवी में है, अल्लाह कहता मैं उनको बचा लूंगा। और ये अल्लाह की सुन्नत है और ये सुन्नत कयामत तक चलेगी। जो अल्लाह के होते हैं, अल्लाह वाले होते हैं, अल्लाह के रास्ते, अल्लाह को मकसद जिंदगी बनाकर गुजारते हैं, उन पर ये तमाम मुसीबतें, बड़ी बड़ी मुसीबतें नहीं आती। अल्लाह ताला उनको निकाल देता है, बचा लेता है। अल्लाह के लिए तो कुछ मुश्किल नहीं है। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम सिर्फ अल्लाह को लें और अल्लाह ही की तरफ मुतवज्जह रहें। और अल्लाह ही तमाम कायनात का मालिक है, इसी तरह मेरा भी मालिक है। मैं दुनिया वालों से सिर्फ जरूरत के तहत ताल्लुक रखूंगी। ज्यादा मेरा ताल्लुक, ज्यादा मेरा कनेक्शन, ज्यादा मेरी तवज्जा अल्लाह ही की तरफ होगी और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ होगी। दुनिया मैं इस्तेमाल करूंगी ऐसे, जिसकी मिसाल दी गई है कि आप एक, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुनिया की मिसाल ऐसी है कि इंसान, एक थका हुआ इंसान एक सायेदार दरख्त के नीचे थोड़ी देर बैठे और फिर उठकर जब आराम कर ले तो उठकर आगे मंजिल की तरफ चल दे। इसी तरह हमें चाहिए कि हम इस दुनिया को इस तरीके से इस्तेमाल करें कि जितनी जरूरत है और वो भी अल्लाह के हुक्म के मुताबिक। हमें नजर रखनी है अपनी मंजिल पे। हमारी मंजिल क्या है? अल्लाह, अल्लाह का दीदार, अल्लाह से मुलाकात। इस मंजिल की तरफ, इस सिरात मुस्तकीम की तरफ चलते हुए हमें इस दुनिया को इस्तेमाल करना होगा। तो लेकिन अब इब्राहिम लूत अलैहिस्सलाम, जाहिर है रहमान के घर में शैतान पैदा होता है, शैतान के घर में रहमान पैदा होता है, ये अल्लाह का तरीका है। अब इनकी जो वो बीवी थी, एक दूसरा नुक्ता ये है कि उनकी जो बीवी थी वो इनकी मुखालिफ थी और वो अपनी कौम के नजरियात पे थी। तो ये याद रखें, चाहे वो बीवी है चाहे बेटा है, अगर उस घर में, एक घर में, एक खानदान में एक अल्लाह वाला है लेकिन उसके घर वाले, उसके खानदान वाले उसके नजरिए को नहीं ले रहे और वो अपनी अलग दुनिया बसाए हुए, तो अल्लाह ताला उन लोगों को उन्हीं के साथ शामिल करेगा। उस अल्लाह वाले के वो रिश्तेदारी की वजह से उसके साथ शामिल कभी भी अल्लाह ताला नहीं करेगा। ये जो दुनिया की रिश्तेदारी है दुनिया के लिए, आखरत की जो असली रिश्तेदारी है वो अल्लाह और रसूल का इश्क है, अल्लाह और रसूल की मोहब्बत है। अगर ये चार बहन भाई हैं और अगर उनका नजरिया अल्लाह और रसूल है और एक ही रास्ते पे, तो एक साथ सब अल्लाह ताला उन्हें एक साथ रखेगा। लेकिन अगर अलग अलग नजरिए हैं, कुछ दुनिया वाले हैं, कोई नाफरमान है, कोई कुछ एक तीसरा कुछ लेता है, कुछ अपनी मर्जी करता है, तो जो उन चारों में जो मुखलिस होगा वो आखरत में इन दुनिया वालों के साथ कोई ताल्लुक नहीं होगा। फिर अल्लाह ताला फरमाता है
सिवाय उस लूत की बीवी के, जब हमने उसे रुकने और बाकी रह जाने वालों में मुकर्रर कर दिया है। जब भेजे हुए फरिश्ते आले लूत के पास पहुंचे, तो लूत अलैहिस्सलाम ने कहा, तुम लोग तो कुछ अनजान से मालूम हो रहे हो। उन्होंने कहा, नहीं, बल्कि हम तेरे पास वो चीज लाए हैं जिसमें ये लोग शक छुपा कर रहे थे।
वा अतैनाका बिल हक्क वा इन्ना लसादिकून,
हम तो तेरे पास सरी हक लाए हैं और है भी बिल्कुल सच्चे।
इमरातहु कद्दरना इन्नहा ला मिनल गाबिरीन, सवाय लूत अलैहिस्सलाम की बीवी के, उसको अल्लाह ताला नहीं माफ करेगा। अल्लाह ताला कहेगा उस बीवी को रोक दिया जाएगा किसके पास, वो उसके कौम वालों के पास जिनके पास जो उनके नजरिए पे थी, ये अपने शौहर के नजरिए पे नहीं थी, ये उनके। अब यहाँ एक चीज नुकता हमें नोट करना चाहिए, नजरिया एक ही है, वो है अल्लाह, अल्लाह की पहचान कुरान सुन्नत और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अगर हम इसके खिलाफ चलेंगे तो हम जिसका भी नजरिया हमने लिया है हम उसके साथ अल्लाह ताला उठाए, अल्लाह मुझे उठाएगा, चाहे मैंने कितनी नमाजें हज उम्र खैर खैरा जकात रोजे सब रखे हो, ये याद रखिए असल चीज है नजरिया अकीदा। अगर हमारा अकीदा और नजरिया सही नहीं है और हम फैशन के तौर पर या एक खानदान मुसलमान है तो उसके तौर पर हम उठक बैठक कर रहे हैं या खैर खैरात कर रहे हैं या रोजे रख रहे हैं या जकात दे रहे हैं, वो अल्लाह ताला सब उड़ा देगा। असल हमें नजरिया सिर्फ अल्लाह और रसूल, ये आप हम लोगों को सोचना चाहिए कि हम किस नजरिए पे जिंदगी गुजार रहे हैं। हमारा नजरिया सिर्फ अल्लाह की मुलाकात होना चाहिए, रसूल पाक सल्लम की इताअत होना चाहिए और उसका तरीका अपने उस्ताद से सीखना चाहिए जिसके साथ हम कनेक्ट हैं, अल्लाह जो जिसकी वजह के पास हम अल्लाह और रसूल के लिए गए, अल्लाह और रसूल से मुलाकात के लिए हम अपनी तरबियत करने के लिए गए, उनसे उनके जरिए से हम अल्लाह का नूर हासिल करेंगे। इसके बगैर उस्ताद के बगैर कुछ भी नहीं है, ये याद रखें। तो अब अल्लाह ताला ने कहा ये बाकी रह जानों में जो रह गए पीछे उनमें रह जाएगी। फलम्मा जा आला लूत निल मुरसलीन, जब ये फरिश्ते लूत अलैहि सलाम के पास आए पहुंचे तो उन्होंने कहा काला इन्नकुम कौमन मुनकरून, तुम लोग तो मुझे कुछ अजनबी से लग रहे हो। अब लूत अलैहि सलाम ने उन फरिश्तों से पूछा जो लड़कों की शक्ल में से कि तुम तो मेरे कौम के नहीं लग रहे, तुम तो अजनबी लग रहे हो। तो वो उन्होंने जवाब दिया कालो बल जेना का बेमा कानो फी है यम तरून, का नहीं हम आपके पास आए हैं, हम वो चीज लाए हैं जिसमें ये शक करें। काय में शक कर रहे हैं? अल्लाह के अजाब में। ये लोग कहते थे कि हम तो इतनी नफरमानी कर रहे हैं, कुरैश वाले भी कहते थे कि हम इतनी नफरमानी कर रहे हैं, इतनी तकलीफें दे रहे हैं, इतनी आप पे मुसीबतें ढाल रहे हैं, कहे वो अजाब लाए हैं, वो अजाब किधर है वो अजाब? तो अल्लाह ताला ने अब वो अजाब जो हम अजाब मांगते हैं वो अल्लाह ताला ने अब इनको भेज दिया, इनके पास भेज दिया। तो अब उन्होंने कहा कि नहीं हम वो चीज लाए जिसमें ये शक कर रहे थे। अच्छा अब इसे हम समझे कि हम शक नहीं कर रहे, हम भी तो शक कर रहे हैं, हमें तो देखना होगा इस हर एक आयत की उसमें अपनी जहनी हालत देखनी है, अपने दिल की हालत देखनी है, अपनी सोचों की हालत देखनी है, अपने अमल को देखना है कि मैं किस यकीन के साथ, किन सोचों के साथ, किस इरादों के साथ ये जिंदगी गुजार रही। ये जिंदगी इंतहाई कीमती है और किसी वक्त भी अल्लाह की तरफ से बुलावा आ सकता है। तो जो हमने किया है जिस नजरिए के तहत, जिस अकीदे के तहत, जिस अमल के तहत हमने जिंदगी गुजारी है वही होगा। अगर हमने अल्लाह और रसूल के नजरिया नहीं लिया और अल्लाह और रसूल का कुरान सुन्नत के मुताबिक अमल नहीं किया तो हमें अल्लाह ताला यहूद नसारा मुशरिकों के साथ खड़ा करेगा, ये याद रखें। हमें अल्लाह ताला इस पे नहीं बख्शेगा कि हम रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में या हमने नमाजें पढ़ी हैं या हज किए हैं या उम्रे किए या खैर खैर, इस पे अल्लाह ताला हमें नहीं, अल्लाह ताला वहां खड़ा करे, क्योंकि अल्लाह ताला को शिर्क पसंद नहीं है। और शिर्क क्या है? शिर्क यह है कि अपनी मर्जी से जिंदगी गुजारना, अल्लाह और रसूल का हुक्म नहीं मानना, अपनी मर्जी से जिंदगी गुजारना, ये शिर्क है। फिर उन्होंने कहा वो आतेना का बिल हक है वह इन सादिकों, हम आपके पास वो हक लाए यानी जो पैगाम अल्लाह की तरफ से लाए हैं वो बिल्कुल सच है। क्या कि अब इन पर अजाब आएगा, ये अजाब के उसमें थे नाफरमानी में थे, अल्लाह का कहना नहीं माना, तो अब जिसमें ये शक करते थे, अब शक करने का मतलब क्या है? जिस अल्लाह और रसूल और कुरान और सुन्नत के खिलाफ जिंदगी गुजारना, इसका मतलब यह है मुझे तो अल्लाह के अजाब पे यकीन नहीं है, मुझे तो आखिरत पे यकीन नहीं है, मुझे तो मरना नहीं है, ये तमाम शक की सूरतें हैं। तो अब इन चीज से हमें भी देखना चाहिए कि हम अपने आप को देखें। अब ये हमारा कुरान जो है हमारे लिए आईना है, हमें अपना मुहासबा करना चाहिए इन तमाम चीजों से। अल्लाह ताला ने ये जो तमाम पैगंबरों की ये हमारे लिए नमूना है, ये तमाम वाकयात हमारे साथ भी हूबहू ऐसे ही होंगे जैसे होंगे। अल्लाह की जो सुन्नत है वो कभी भी बदलती नहीं है, क़यामत तक एक ही सुन्नत रहेगी, चाहे वो पैगंबरों का जमाना हो चाहे आखिरी जमाना हो। हमें सोच समझ के कदम उठाना चाहिए और जिंदगी गुजारनी चाहिए। जिंदगी कोई ऐसी, अल्लाह ताला ने मुझे बेमकसद पैदा नहीं किया, फजूल पैदा नहीं किया, मेरी जिंदगी का एक मकसद है और वो मकसद क्या है, अल्लाह की पहचान, अल्लाह की बंदगी, अल्लाह और रसूल के हुक्म के मुताबिक जिंदगी गुजारना, अल्लाह और रसूल का आशिक होना, ये है हमारा मकसद। फिर उन्होंने कहा
अब तू अपने खानदान समेत इस रात के किसी हिस्से में चल दे और आप उनके पीछे रहना, और खबरदार तुम में से कोई पीछे मुड़कर भी ना देखे, और जहां तक तुम्हें हुक्म किया जा रहा है वहां चले जाना। और हमने उसकी तरफ इस बात का फैसला कर दिया कि सुबह होते होते इन लोगों की जड़ें काट दी जाएंगी।
अब उन्होंने कहा, फरिश्तों ने लूत अलैहिस्सलाम से कहा, फअसिर बेअहले का बेकत इम मिन लैले वत्तबे अदबारहुम वला यल्तफित मिनकुम अहदुम वम्दू हैसो तुमरून। आप अपने खानदान समेत रात के तीसरे पहर यानी 2 बजे, 1 बजे, 3 बजे, ये तीसरा पहर आप चल दे, निकल जाए शहर से, आप निकल जाए वो जगह छोड़ दे, और हम आप पीछे रहिएगा, यानी आप जो शागिर्द हैं जो भी मुसलमान आपके साथ हुए हैं वो आगे होंगे, आप पीछे रहिएगा। लेकिन एक बात का याद ख्याल रखें कि पीछे मुड़ के मत देखिएगा। आप पीछे मुड़ के मत देखिएगा क्या मतलब हुआ, ये भी अभी तक, और जहां आपको हुक्म दिया गया आप वहां चले जाएं। आप पीछे मुड़ के क्यों ना देखिएगा, क्योंकि अल्लाह ताला ने जब ये निकल जाएंगे तो जाहिर है वो आतिशफिशां फाड़ पटेगा या जिलजिला आएगा, एक बड़ी चंगार होगी, आवाज होगी, तो जो भी पीछे मुड़ के देखेगा वो उन्हीं लोगों में होगा। तो अब अल्लाह ताला ने मना कर दिया कि नहीं पीछे मत देखना, सीधे चलते चले जाओ, वहां जाओ जहां हुक्म दिया गया है। फिर वकदैना इलैहि ज़ालिकल अम्र अन्न दाबिरा हम हाउला ए मक्तूम मुसबहीन, हमने उनकी तरह इस बात का फैसला कर दिया है कि सुबह होते ही इनकी जड़ें काट दी जाएंगी। लूत अलैहि सलाम की कौम पर अल्लाह ताला ने एक जबरदस्त जलजला आतिशफिशा फाड़ दिया और उनको छतों के बल गिरा दिया, बल्कि ये भी नहीं, बल्कि और उन पे अजाब आता रहा, और ये जो आतिशफिशा था या ये जलजला जो था ये आतिशफिशा कह सकते हैं, क्योंकि उसके जो पत्थर थे वो पके हुए थे ही, यानी भट्टी में जो पत्थर पकाए जाते हैं उस तरीके के ये पत्थर आके उस कौम पे गिरे और अल्लाह ताला ने उनको जड़ से खत्म कर दिया। फिर
और शहर वाले खुशियां मनाते हुए आए और लूत अलैहि सलाम ने कहा, ये लोग मेरे मेहमान हैं, तुम मुझे रुसवा ना करो। अल्लाह ताला से डरो और मुझे रुसवा ना करो। वो बोले, क्या हमने तुझे दुनिया भर की ठेकेदारी से मना नहीं कर रखा। लूत अलैहिस्सलाम ने कहा, अगर तुम्हें करना ही है तो ये मेरी बच्चियां मौजूद हैं।
अच्छा, अब अल्लाह वो जो फरिश्ते लोग थे जब फरिश्ते आ गए लूत अलैहिस्सलाम के, लड़कों की शक्ल में आए थे, खूबसूरत थे, तो लड़के तो थे वो बदमाश और अल्लाह के नाफरमान। जब उन्होंने देखा कि लूत अलैहिस्सलाम के पास बड़े खूबसूरत लड़के हैं, दो लड़के आए, तो वो सब के सब लूत अलैहिस्सलाम के पास आ गया। वजा अहलुल मदीना थे यस्तबशिरून, वो शहर वाले खुशी मनाते हुए लूत अलैहिस्सलाम के पास आए। काला इन हाउलाए ज़ैफी फला तफ़दहून, लूत अलैहिस्सलाम ने कहा कि भाई ये मेरे मेहमान है, मुझे तुम शर्मिंदा नहीं करो, मुझे रुस्वा मत करो, ये नहीं करो तुम, ये वत्तकुल्लाह वला तहज़ून, अल्लाह ताला से डरो और मुझे रुस्वा मत करो, अल्लाह ताला से डरो। तो उन्होंने कालू, उन्होंने कहा वो, अब वो कौम ने क्या जवाब दिया जब लूत अलैहिस्सलाम ने उनसे ये कहा, तो कौम ने क्या जवाब दिया, कालू अवलम ननहक अनिल आलमीन, ये तमाम बुराइयों से मना करने की ठेकेदारी तुमने ली हुई है, ये जिम्मेदारी तुमने ली हुई है। वो लूत अलैहिस्सलाम से कहने लगे कि तुम हमें मना नहीं कर सकते। तो लूत अलैहिस्सलाम ने कहा काला हाओ लाए ले बनाती इन कुंतुम फाइलिन, लूत अलैहिस्सलाम का अगर तुम में शहवत इतनी जबरदस्त है तो तुम्हारे घर में औरतें हैं वो तुम्हारे लिए काफी नहीं है कि तुम यहाँ आ गए और इनसे, तो जाहिर शहवत जो है वो तो अल्लाह ताला ने उसके लिए औरत को रखा हुआ, मर्द का तो नहीं है, लेकिन ये अल्लाह के नाफरमान थे। जैसे अब है तो अब हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम बच्चों को, अब वो ही आखिरी जमाना है, हम अपने बच्चों को बचाएं और लड़कियों को भी और लड़कों को भी इस चीज से, और शुरू से उन्हें मना करें और बताएं, लड़कियों को माएं बताएं, लड़कों को बाप बताएं। अगर बाप लापरवाह है, नहीं कर रहा, तो माँ को ये दोनों जिम्मेदारी देनी है, लेकिन बच्चों को बताना है, बच्चों से कोई चीज छुपानी नहीं है। जब वो 7-8 साल के बच्चे हो गए, उस वक्त से बच्चों को ऐसा ऐसा बड़े तरीके से उन लोगों को बताना होगा। लेकिन ये एक नफरमान कौम थी, तो अल्लाह ताला ने इनको पकड़ा। तो जाहिर है अब जो ये बुराई फैल रही है, बाकायदा फंडिंग हो रही है, तो क्या अल्लाह ताला पकड़ेगा? नहीं, बिल्कुल पकड़ेगा। जैसे लूत अलैहिस्सलाम के कौम को पकड़ा, अब शक्ल मुख्तलिफ हो सकती है, असल तो है खत्म कर देना, जड़ से हटा देना, नेस्त नाबूद कर देना, अल्लाह ताला ने कहा तो ये है। तो फिर
की कसम वो तो अपनी बदमस्ती में सरगर्दा थे, बस सूरज निकलते निकलते उन्हें एक बड़े जोर की आवाज ने पकड़ दिया। बिलाफिर हमने इस शहर को ऊपर तले कर दिया और इन लोगों पर कंकर वाले पत्थर बरसाए। बिलाशुबा बसीरत वालों के लिए इसमें बहुत सी निशानियां हैं।
अब अल्लाह ताला ने फैसला कर लिया और ये फरिश्तों के जरिए को किया, तो अल्लाह अमरो का इन्नहुम लफी सकरतिहिम या महून, वो जाहिर लड़के थे, मस्ती थे, सरगर्दा थे अल्लाह की नाफरमानी में, और उन्हें पता नहीं था दुनिया की मोहब्बत में इन बुराइयों में इतने पड़े हुए थे कि उन्हें पता नहीं है कि हम जिससे बात कर रहे हैं वो एक वक्त का इमाम है, वक्त का पैगंबर है, अल्लाह ताला के जरिए अल्लाह ताला ने उसको नबी मुकर्रर किया है, वो उनका लेकिन ये सब चीजें वो भूल गए। जब इंसान पे गुमराही छा जाती है और वो गुनाहों में डूब जाता है और दुनिया की मोहब्बत में डूब जाता है, तो फिर उसे सामने नजर नहीं आता कि मुझे कौन नसीहत कर रहा है, कौन क्या बात बता रहा है, सब एक ही चीज है। उस पर वो शैतानी सवार होता है, उस पर वो शैतानी ख्यालात सवार होते हैं, उसको वो नफ्स उसको बरगला रहा होता है और दुनिया को अच्छा करके दिखा रहा होता है। तो फिर उन फरिश्तों ने अल्लाह ताला ने फैसला किया, फाहाजत मुशरिकीन, सूरज निकलने से पहले पहले एक जोरदार आवाज हुई, यानी जलजला आया, अतिविशाम पहाड़ पका हम फटा, अल्लाह ताला ने उस शहर को तले ऊपर कर दिया। अब तले ऊपर कर दिया और फिर उन लोगों पर कंकड़ बरसाया। अब ये कंकड़ कौन है? ये वो कंकड़ दोजख के पत्थर बरसाए, वो जले हुए दोजख में गर्म। अब ये या तो आतिशफशां पहाड़, वो भी बहुत ज्यादा लावा और वो होता है, इसी तरह जलजला अल्लाह के लिए कुछ मुश्किल नहीं है। और ये अल्लाह ताला ने उस कौम पर बसा दिया, इन्ना फी ज़ालिका लायतिल तिल लिल मुस्तवस्सिमीन। अल्लाह कह रहा है ये निशानियां हैं उन लोगों के लिए जो बसीरत से काम ले। बसीरत ये वो नूर है, अल्लाह और रसूल की मोहब्बत का इश्क का वो नूर है जिससे इंसान बहुत कुछ समझ जाता है। एक बसारत है जो इन आंखों से देख रहे हैं, लेकिन ये जो बसीरत है ये वो दिल की आंखें हैं, ये वो नूर है जिससे हमें नुक्ते समझ में आते हैं। तो अल्लाह ताला मुझसे मुझे यही कह रहा है कि बसीरत हासिल करो, नूर हासिल करो जिससे तुम्हें पता चले कि तुम्हें अल्लाह ताला ने जिंदगी किस मकसद के लिए दी है। बेमकसद नहीं है, तुम जो कर रहे हो वो क्या तुम्हें दोजख की तरफ ले जा रहा है, जहन्नम की आग की तरफ ले जा रहा है? जो खा रहे हो पी रहे हो, जो ताल्लुकात है, जो मामलात है, जो जबान है, जो अखलाक है, क्या वो अल्लाह की नाफरमानी में जा रही? क्या वो दोजख में जाने के लिए हमारी वो अमल कर रहे हैं? तो हमें सोचना चाहिए, गौर फिक्र करना चाहिए और हमें पूरी तवज्जो अल्लाह की तरफ देना चाहिए। कुरान और सुन्नत हमारे अल्लाह ताला ने अपने लिए पैदा किया है, पैदा करने के बाद अल्लाह ताला ने मुझे खुला नहीं छोड़ा, अल्लाह ताला ने मुझे बाकायदा अपना महबूब दिए हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और फिर अपना पैगाम उनके जरिए मुझे पहुंचाया है कि इस कुरान के जरिए से और मेरे महबूब के तरीके पे अगर तुम जिंदगी गुजारोगे तो तुम्हें जन्नत मिलेगी, जन्नत में अल्लाह का दीदार मिलेगा। अगर इसके खिलाफ जिंदगी गुजारी तो तुम्हें दोजख का अजाब बल्कि मुसलमानों को दोजख का गड़ा मिलेगा। रब्बना आतिना फिद्दुनिया हसनतन वफिल आखिरति हसनतन वक़िना अज़ाबन्नार।